आज है 17 दिसंबर दिन गुरुवार। स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं सुशीला सिंह। दिल्ली सचिवालय पर पड़े छापे के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी। बीजेपी ने दिए आरोपों के जवाब, तो आपने मांगा अरुण जेटली का इस्तीफा।
न स्मृति ईरानी के जवाब में भ्रष्टाचार के जो मामले हमने उजागर किए उसका जवाब है, न अरुण जेटली जी के जवाब में भ्रष्टाचार के जो मामले उठाए गए उसका जवाब है।
दिल्ली पुलिस ने अलकायदा की भारत शाखा से जुड़े 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कार्यक्रम में होंगी आपकी चिट्ठियां और खेल की भी खबरें, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के लगाए आरोपों का खंडन किया है। आज सुबह आम आदमी पार्टी की तरफ से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण जेटली पर जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA के अध्यक्ष पद पर रहने के दौरान कई वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए थे। बाद में DDCA बीजेपी की तरफ से मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एक भ्रष्ट अफसर के दफ्तर पर CBI छापे से ध्यान हटाने के लिए आम आदमी पार्टी ऐसा कर रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने चरमपंथी गुट अलकायदा की भारतीय शाखा के 3 महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इस गिरफ्तारी से चरमपंथी संगठन की इस क्षेत्र में गतिविधियां कमजोर होंगी। अधिकारियों ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में से एक मोहम्मद आसिफ है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा का संस्थापक माना जाता है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि गिरफ्तार संदिग्ध युवा भारतीयों को इस संगठन में भर्ती करने में शामिल थे। जापान के एक पत्रकार ने दक्षिण कोरिया के अभियोक्ताओं की आलोचना की है। तात्सुया काटो को हाल ही में मानहानि के आरोपों से बरी किया गया है। अभियोक्ताओं की निंदा करते हुए उन्होंने फिर इस अफवाह को दोहराया कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की पत्नी किसी अन्य व्यक्ति के साथ समय बिता रही थी जब उनकी फेरी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में 300 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर स्कूली बच्चे थे। पत्रकार तात्सुया ने कहा, दक्षिण कोरियाई अभियोक्ताओं को इस फैसले को स्वीकार कर लेना चाहिए और इस पर फिर याचिका दायर नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जांच की प्रक्रिया शुरू से ही अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण थी। ये थे तात्सुया काटो के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में अमेरिका और रूस के रिश्तों में सुधार आएगा, चाहे अगला रूसी राष्ट्रपति कोई भी हो। वर्ष के अंत में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि सीरिया में चुनाव के लिए अनुकूल माहौल स्थापित करने पर अमरीकियों के साथ रूस का समझौता होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए तुर्की की आलोचना की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें भ्रष्टाचार समेत कई चुनौतीपूर्ण सवालों का सामना भी करना पड़ा। तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि देश के दक्षिण पूर्व में सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में पिछले 2 दिनों के दौरान प्रतिबंधित कुर्द संगठन PKK के 23 सदस्य मारे गए हैं। कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और टैंक भी तैनात किए गए हैं। रूस 10,000 सेना के जवान कुल 10,000 सेना के जवान और पुलिस बल वहां भेजा गया है। खबरों के अनुसार PKK समर्थकों ने इस इलाके में बैरिकेड लगाकर खाइयां खोद ली थी। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोग्लू ने कहा है कि ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक तुर्की का हर घर PKK लड़ाकुओं से खाली नहीं हो जाता। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिन भर लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। दिल्ली सचिवालय में छापे का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी दिल्ली में तो मानो इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल पड़ा है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस्तीफे की मांग की है। आम आदमी पार्टी ने उन पर दिल्ली जिला क्रिकेट संघ या DDCA के अध्यक्ष और फिर एक साल DDCA के पैट्रन इन चीफ के पद पर रहने के दौरान कई तरह की अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। अरुण जेटली ने अपने विरुद्ध सभी तरह के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। साथ ही अरुण जेटली ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देश के संघीय ढांचे को नष्ट करने का आरोप लगाया। आज की घटनाओं पर हमारे सहयोगी जुबैर अहमद की ये रिपोर्ट।
आज का दिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच आरोपों और जवाबी आरोपों का दिन रहा। कल की तरह आज भी सियासी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु वित्त मंत्री अरुण जेटली रहे। कल कांग्रेस पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग की थी, आज आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री से उनका इस्तीफा लेने की अपील की है। अरुण जेटली 1999 से 2013 तक दिल्ली जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA के अध्यक्ष और पैटर्न रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी का इल्ज़ाम है कि श्री जेटली के दौर में DDCA में हर तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के 5 नेता और प्रवक्ता मौजूद थे। वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। प्रवक्ता गौरव चड्ढा ने अरुण जेटली के खिलाफ आरोपों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पुनर्निर्माण और मुरम्मत के लिए DDCA ने 24 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया था, लेकिन खर्च कर दिए गए 114 करोड़ रुपए।
114 करोड़ रुपए में से EPIL जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको केवल 57 करोड़ की पेमेंट करी गई, बाकी 57 करोड़ रुपए कहां गए?
श्री चड्ढा ने कहा कि DDCA ने 5 ऐसी कंपनियों को भुगतान किया जिनके रजिस्टर्ड दफ्तर, आधिकारिक ईमेल, निदेशक और शेयरधारक एक ही लोग हैं।
इन पांचों कंपनियों का रजिस्टर्ड ऑफिस एक ही जगह है, इन पांचों कंपनियों का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एक ही जगह है, इन पांचों कंपनियों के डायरेक्टर्स सेम लोग हैं और इन पांचों कंपनियों के शेयर होल्डर्स में आपस में नेक्सस है, वही लोग घूम फिर के डायरेक्टर बन जाते हैं, वही लोग घूम फिर के शेयर होल्डर बन जाते हैं।
अगला इल्जाम सवाल के रूप में आया, वित्त मंत्री और DDCA के कोषाध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के बीच क्या संबंध है? इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि फिरोज शाह कोटला में बने 10 कॉरपोरेट बॉक्स को अरुण जेटली ने अपने पसंदीदा कॉरपोरेट घरानों को लीज पर दे दिया। इस तरह के कई और विशेष इल्जाम लगाए गए। BJP का जवाब फौरन आया। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, अरुण जेटली के ऊपर उंगली उठाना एक तिरस्कारी हरकत है। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली के खिलाफ आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है।
हम ये सार्वजनिक तौर पर कहना चाहते हैं कि पिछली सरकार में कांग्रेस नित UPA की अध्यक्षता में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने 21 मार्च 2013 DDCA से संबंधित अपनी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट में ये साफ शब्दों में अरुण जेटली जी का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई भी फ्रॉड उनकी अध्यक्षता में नहीं हुआ।
DDCA के चेतन चौहान ने भी अरुण जेटली को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद श्री जेटली का एक ब्लॉग छपा जिसमें उन्होंने इल्जामों की सफाई दी और फिर मीडिया के सामने खुद रूबरू हुए।
संघीय ढांचे पे तो खतरा तब पहुंचता है जब UPA सरकार के दौरान एक यूनियन टेरिटरी की सरकार केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के खिलाफ केस दर्ज कर ले, जबकि उसके पास पुलिस के अधिकार नहीं है। और अब मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री की रणनीति ये है कि उनके पास भ्रष्टाचार के साथ खड़े हुए जब रंगे हाथों पकड़े गए हैं तो केवल एक चारा है कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित करें।
अरुण जेटली के जवाब से आम आदमी पार्टी बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुई। पार्टी के नेता संजय सिंह का जवाबी हमला तुरंत आया।
न स्मृति ईरानी के जवाब में भ्रष्टाचार के जो मामले हमने उजागर किए उसका जवाब है, ना अरुण जेटली जी के जवाब में भ्रष्टाचार के जो मामले उठाए गए उसका जवाब है, बल्कि पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश की गई है।
इन आरोपों के आधार पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वित्त मंत्री का इस्तीफा मांगा है और ऐसा नहीं करने पर प्रधानमंत्री मोदी से उन्हें फौरन बर्खास्त करने की मांग की है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
तो उधर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने और दूसरों को बदनाम करने में यकीन रखते हैं। अरुण जेटली ने एक ब्लॉग में लिखा कि केजरीवाल सरकार खुद से ध्यान हटाने के लिए DDCA को बदनाम कर रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि फेडरलिज्म कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने गलत व्यवहार से संहिता के लिए खतरा भी बन सकता है। तो क्या ये पूरा मामला अब केंद्र बनाम राज्य सरकार का बनता जा रहा है? मैंने यही सवाल पूछा वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन से।
देखिए, दो चीजें हैं, एक तो फेडरलिज्म के सवाल पे ही नहीं, अब वो डायरेक्ट डेमोक्रेट लोकसभा वर्सेस राज्यसभा वाले सवाल पे भी वो बार बार आप कह रहे हैं कि लोकसभा को ज्यादा ताकत होनी चाहिए, सेंटर को ज्यादा ताकत होनी चाहिए अगर वो ये वकालत कर रहे हैं। तो ये कुछ नया अनुभव है जो वो सेंटर में आके कर रहे हैं, इसके पहले बीजेपी इस तरह की बातें नहीं करती थी या सेंटर के लोग भी इस तरह की बातें नहीं, बल्कि कांग्रेस की तरफ से कई दफे राज्यों के हक पे थोड़ा घराघात हुआ, तो जो विरोध सबसे ज्यादा प्रबल ढंग से सामने आया वो बीजेपी के लोग ही किया करते थे। और इधर तो अब ये झगड़े सुलझ गए थे कि राज्यों और सेंटर के बीच किस किस्म का रिश्ता होना चाहिए। राज्यपाल का शासन लगाने वाला मामला ही नहीं था, वित्तीय बंटवारे पे भी, बाकी अधिकारों पे भी, अब वो झगड़े खत्म हो गए। इतने फैसले आ चुके, इतनी बहस हो चुकी कि अब इन बातों को उठाने का कोई बहुत मतलब नहीं है, सिवाय इसके कि आपको तकलीफ हो रही है या आपको अभी जो व्यवस्था चल रही है उतने भर से आपका मन नहीं भर रहा है। जो राज्यों की ताकत इस बीच बढ़ी थी काफी गठबंधन के दौर में, उसके खिलाफ एक किस्म का मैंडेट लोगों ने दिया है, लेकिन फिर ये कि उसके लिए सारी व्यवस्था बदल जाए और फिर राज्य आपके अनुसार ही चलने लगे, ये शिकायत मुझे नहीं लगता कि बहुत जेन्युइन है। आपको ढंग से चलाना आना चाहिए, और गठबंधन वाला दौर अगर उस तरह से कमजोर पड़ा है कि राज्य मंत्री उनके विभाग उनका बजट से लेके हर चीज तय करने लगे हों, तो उस दौर में आज का दौर तो काफी अच्छा है, तो आपको शिकायत का अवसर नहीं होना चाहिए। तो राज्यों की तरफ से जो तकलीफ है अगर कहीं है भी, तो वो बेसिकली पॉलिटिकल लड़ाई का मामला है
जी,
वो गवर्नेंस का सवाल नहीं है
जी। पॉलिटिकल लड़ाई की आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये सीधे सीधे एक केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार का मामला सीधे दिखाई दे रहा है। अगर इस जांच की बात करें जो चल रही है अभी, उसमें सीबीआई का कहना है खुद ये जांच की, उधर बीजेपी भी ये कह रही है कि इसी ये सीबीआई ने जांच की है, हालांकि आप उन पर ये आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के कहने पर हो रहा है, तो ये क्या लग रहा है कि एक तरह से दाव उल्टा पड़ गया है बीजेपी पर ही?
निश्चित रूप से दिल्ली के मामले में तो लग रहा है उल्टा पड़ गया है। असल में कुल मिला के भी अगर आप देखेंगे तो इस बीच जो डेढ़ साल का शासन है मोदी जी का, और मैंडेट मोदी जी को और अरविंद केजरीवाल दोनों को करप्शन के सवाल पे ही मिला है, दोनों भ्रष्टाचार की लड़ाई की ही पैदाइश है एक किस्म से, तो कायदे से इनको करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चलानी चाहिए थी, जो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जो थोड़ा दिख रहा है वो काफी कुछ राजनीतिक बदले वाला मामला बदलता जा रहा है, या कांग्रेस उसको आसानी से बदल ले रही है, अरविंद केजरीवाल आसानी से उसको बदल ले रहे हैं, और उसकी वजह उनका दोष देखने की जगह जिस तरह से धरपकड़ होने की काम हो रहा है उस पे देखना चाहिए। ये दोनों लोग जिस तरह से लड़ रहे हैं उसमें सेंट्रल स्टेट वाला मसला या करप्शन की लड़ाई का मसला नहीं है। कुल मिला जुला के ये है कि जनता जो जागी थी इस बीच करप्शन के सवाल पे, उसका इन्होंने पॉलिटिकल लाभ लिया। अब और अपनी पॉलिटिक्स बढ़ाने में सीबीआई का भी इस्तेमाल हो जाए तो भी, सेंट्रल स्टेट रिश्ते का भी इस्तेमाल हो जाए तो भी, राज्यसभा वर्सेज लोकसभा बना के भी हो जाए तो भी, वो असल में उसी तरफ है। जो काम करके रिजल्ट देना चाहिए था और खासतौर से करप्शन के सवाल पे, वो अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों तरफ से एक भी एफर्ट इस किस्म का दिखाई नहीं दे रहा।
तो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार अब मुख्य मुद्दों, खासकर भ्रष्टाचार से हटकर अब केवल राजनीतिक दांव पेच कर रहे हैं। ये थे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन। इस पूरे मामले के केंद्र में है दिल्ली जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA। तो आखिर ये DDCA काम कैसे करता है, इसे वित्तीय सहायता कौन देता है? ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने बात की क्रिकेट विश्लेषक प्रदीप मैगजीन से।
जो हिंदुस्तान की क्रिकेट है वो एक हिंदुस्तान का क्रिकेट बोर्ड चलाता है, और उनके कोई 30-32 मेंबर्स हैं, डिफरेंट स्टेट यूनिट्स हैं, उनके एक यूनिट मिलके इंडियन क्रिकेट बोर्ड बनता है, जो हिंदुस्तान की क्रिकेट की टीमें चुनता है। उनके अंडर ये सारे क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, लोकल भी होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, इंटरनेशनल भी होते हैं। दिल्ली एक उनका अंग है, और हर स्टेट यूनिट का अपना एक बजट होता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की कमाई टेलीविजन राइट से और बाकी चीजों से बहुत ज्यादा है, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने स्टेट यूनिट को वो पैसे। उसमें हर बोर्ड को लगभग 25-30 करोड़ साल का पैसा मिलता है। उसके अलावा जो स्टेट यूनिट, जैसे दिल्ली, अगर दिल्ली में क्रिकेट मैचेस कराता है इंटरनेशनल, तो उससे भी जो कमाई होती है वो उनके हिस्से में जाती है। तो एक तरीके से हर क्रिकेट बोर्ड का, दिल्ली का भी जो बजट है वो 30-35-40 करोड़ सालाना का बजट होता है। दिल्ली की जो क्रिकेट वाले जो हैं वो अपने लोकल टीमें चुनते हैं, अंडर 19, अंडर 16, रणजी ट्रॉफी जो हिंदुस्तान का डोमेस्टिक टूर्नामेंट है जिसमें सब स्टेट क्रिकेट यूनिट खेलती हैं, दिल्ली भी खेलता है, उसके लिए टीमें चुनती है। तो एक मूल रूप में ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हिंदुस्तान की पूरी क्रिकेट हर स्टेट यूनिट की मदद से और स्टेट यूनिट बोर्ड की मदद से चलती है।
इसके सदस्य कौन होते हैं और अध्यक्ष किस तरह से बनाया जाता है? एक पॉलिटिशियन भी होते हैं इसके सदस्य?
पॉलिटिशियन तो हर जगह ही हैं, आप देखिए ना, जेटली जी दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे कोई 10-15 साल, 2013 तक वो अध्यक्ष थे 98 से लेकर, और हर बोर्ड में पॉलिटिशियन है। शरद पवार जी इंडिया के क्रिकेट के प्रेसिडेंट थे बोर्ड के, और भी बड़े बड़े, रजीव शुक्ला देखिए वो यूपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। तो इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं, क्योंकि क्रिकेट इतना पॉपुलर स्पोर्ट है हिंदुस्तान में और इतना विजिबिलिटी है, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं क्रिकेट की वजह से वो टेलीविजन पे होते हैं, लोगों के सामने होते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी उनको उससे मिलती है। इस वजह से आप देखेंगे कि जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, उनके बड़े बड़े नेता क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए हैं।
जी, ऐसे आरोप भी लगते रहे हैं कि जो बड़ी शख्सियत होती है या जिनका स्ट्रांग बैकग्राउंड होता है उन बच्चों को तरजीह दी जाती है इस एसोसिएशन, कितने सही हैं ये आरोप?
देखिए, आरोप लग रहे हैं, खासतौर पे दिल्ली में तो बहुत ज्यादा आरोप हैं ऐसे, क्योंकि दिल्ली एक हिंदुस्तान का कैपिटल है और जैसे सिलेक्शन यहाँ होती है, यहाँ बहुत शुरू से आरोप लगते आ रहे हैं कि जूनियर टीम है, सीनियर टीम है, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, पुलिस ऑफिसर्स के बच्चे हैं, मिनिस्टर्स के बच्चे हैं, तो वो अपना डालते हैं सिलेक्टर से, और उनके बच्चे एलिगेशन हुई हैं, प्रूव भी हुए हैं कि कई गलत तरीके से उनको पुश किया गया और जेन्युइन जो बच्चे हैं उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाई।
आप क्रिकेट इतने सालों से कवर कर रहे हैं और DDCA का ये जो मामला आया है भ्रष्टाचार का, क्या कहेंगे कि ये पहला इस तरह का मामला सामने आया है?
देखिए, एक नई बात तो आज की तारीख में मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो घोटाले हैं ये सामने आ रहे हैं। ये जो जितने भी ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं ये पिछले 10 साल से लग रहे थे। मुझे मतलब एक तरीके से अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सबके नजरों में था, ये जर्नलिस्टों के, अखबारों के, टीवी के चैनल में सबकी नजरों में था, लेकिन किसी तरह से क्योंकि इतने पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं ये सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉग्निजेंस ली, बोर्ड में उन्होंने कुछ लोगों को हटाया पद से, जैसे श्रीनिवासन हटे, अब DDCA में ये मामला सामने आ रहा है, जिनमें जेटली जैसे जो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के हैं, जो क्रिकेट के साथ काफी सालों से जुड़े हुए हैं, उन पे एलिगेशंस लग रही हैं, क्योंकि वो DDCA के प्रेसिडेंट थे और जो ये घोटाले सामने आ रहे हैं उन्हीं के टेन्योर में।
तो क्रिकेट विश्लेषक प्रदीप मैगजीन का कहना है कि DDCA में घोटाला आना नई बात है, जो सामने आया ये घोटाला ये नई बात है, लेकिन आरोप जो है पहले से भ्रष्टाचार के लगते रहे हैं।
देश दुनिया की खबरें 24 घंटे bbchindi.com के साथ।
दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दावा किया है कि उन्होंने चरमपंथी संगठन अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप के संस्थापकों में से एक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दो और संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है और अदालत ने इन्हें 12 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पूरी जानकारी के साथ दिव्या आर्या।
केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और उत्तर प्रदेश आतंक निरोधी दस्ते के साथ किए गए एक संयुक्त ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस ने 41 वर्ष के एक शख्स को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद आसिफ है और ये उत्तर प्रदेश के संभल इलाके का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर अरविंद दीप के मुताबिक आसिफ को 14 दिसंबर यानी सोमवार को दिल्ली के सीलमपुर फ्लाईओवर के पास पकड़ा गया।
When he was there near Seelampur, which is in the northeast of Delhi, he was arrested.
जब वो उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में था, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा हमने उत्तर प्रदेश के संभल इलाके में रहने वाले एक और शख्स जफर मसूद को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया है। तीसरे संदिग्ध व्यक्ति अब्दुल रहमान को उड़ीसा के कटक से गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों को 12 और दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।
अरविंद दीप के मुताबिक चरमपंथी संगठन अलकायदा से जुड़े किसी भारतीय की ये पहली गिरफ्तारी है।
इन तीन लोगों पर केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की लंबे समय से नजर थी। हमारी जानकारी के मुताबिक इन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर प्रशिक्षण दिया गया और ये अलकायदा के भारतीय उपमहाद्वीप के धड़े में बहुत सक्रिय थे।
अरविंद दीप के मुताबिक मोहम्मद आसिफ के पास एक लैपटॉप और कुछ सिम कार्ड भी मिले हैं, जिनसे और जानकारी मिलने की उम्मीद है। दिव्या आर्य, BBC दिल्ली।
और अब समय है आपकी चिट्ठियों का।
आपकी राय। नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का आज आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूँ और हैं
वंदना।
वंदना जी वंदना बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कौन कौन सी चिट्ठियाँ किन किन विषयों पर ईमेल ढेर सारे हैं आपके पास?
जी काफी सारे हैं लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगी निर्भया उनकी माँ का साक्षात्कार किया था विनीत खरे ने हमारे सहयोगी उसे लेकर काफी चिट्ठियां और ईमेल आए हैं।
जी 16 दिसंबर 2002 यानी आज से 3 साल पहले जो सामूहिक दिल्ली में हुई थी। जी हाँ तो उस पर क्या लिख रहे हैं हमारे श्रोता?
जी ये राजीव बिलैया हैं, इन्होंने लिखा है कि निर्भया की माँ का साक्षात्कार बड़ा मर्मस्पर्शी रहा, विनीत खरे को खूब बधाई। उन्होंने भावुक माँ से बिना रोके टोके सारी बात कहलवाई, भावना में बिना बहे इतना अच्छा वार्तालाप करने के लिए विनीत जी का साधुवाद।
जी
जी इसी तरह की एक ईमेल है जंग बहादुर सिंह जो हमारे नियमित श्रोता है
गोल पहाड़ी जमशेदपुर उनका हम लोगों को पता भी याद हो गया है
तो ये कहते हैं कि सच कहता हूँ आज सुबह सुबह फिर रो गया जैसे 3 साल पहले रोया था, आज भी आंखें छलक गईं। आशा देवी से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब किसी को भी कोई भी अपराध करने से हम रोकने में अक्षम हैं तो फिर सजा में नाबालिग कहकर उसे छूट कैसे मिल सकती। ये बात निर्भया की माँ ने कही थी।
यह जो तीसरा जो अपराधी है वो अब छूटने वाला है उसके बारे में जंग बहादुर सिंह जी लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे और श्रोताओं की भी चिट्ठियां इस विषय पर आई हैं लेकिन सब चिट्ठियों को पढ़ना मुमकिन नहीं है। हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, जितना संभव हो सका हम लोगों ने किया। विनीत खरे ने निर्भया की माता जी से बात की, उनके पिताजी से भी हमने बात की, तो आप इसी तरह सुनते रहें। और भी मैं देख रहा हूँ पोस्ट कार्ड आपके हाथ में एक है वंदना।
एक और चिट्ठी है जैसलमेर राजस्थान से और ये लिखते हैं कि बीबीसी हिंदी बिरादरी को दिलावर कादरी का आदाब, मैं बीबीसी हिंदी व उर्दू सेवा 1998 से सुन रहा हूँ तो बहुत पुराने।
जी बिल्कुल।
और ये कहते हैं कि समसामयिक घटनाओं के लिए बीबीसी एक अकूत खजाना है और उनका कहना है कि आप अपने कार्यक्रमों में भारतीय संविधान पर कुछ रोशनी डालें तो बेहतर होगा।
दिलावर कादरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पोस्ट कार्ड लिखा है। अगर आपको याद हो तो भारतीय संविधान पर हम बीच बीच में इस तरह की खबरें करते रहते हैं या विश्लेषण करते रहते हैं जिनमें संविधान का अगर कोई जिक्र आता है या कोई खबर होती है तो उस पर रोशनी डाली जाती है। आपने ही अपनी चिट्ठी में मैं देख रहा हूँ, देखिए इन्होंने सुभाष कश्यप जी का जिक्र किया है और लिखते हैं कि सुभाष कश्यप जी का मानना है कि देश में 99% लोगों को पता ही नहीं है कि संविधान किस चिड़िया का नाम है। अब सुभाष कश्यप जी संविधान के विशेषज्ञ हैं, हम उनसे इंटरव्यू करते रहते हैं बीच बीच में, वो आप सुनते होंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा संभव हुआ तो ज़रूर संविधान पर एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।
जी और अगली चिट्ठी है गड़ैया शोहर जिला से,
बिहार से।
बिहार अब्दुल्ला साहब हैं
जी।
इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को ये समझना चाहिए या समझने की कोशिश करनी चाहिए कि देश में आखिर असुरक्षा, अलगाव या बड़े बड़े शिक्षित लोगों में असंतोष की भावना आखिर क्यों बनी हुई है।
जी मैं पोस्ट कार्ड तो आपके हाथ में है, मैं देख रहा हूँ इसके पीछे एक स्टिकर लगा हुआ है सफेद रंग का, वो क्या
जी? इन्होंने पते के साथ लिखा है कि ये मेगा लिसनर्स क्लब है, श्रोताओं का क्लब है, उसका इन्होंने नाम लिखा, जाहिर है जहाँ लोग मिल के इस कार्यक्रम
रेडियो लिसनर्स
होंगे।
क्लब, अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छा। और ये है मेगा लिसनर्स क्लब, विलेज पोस्ट ऑफिस गड़ैया श्योहर और बिहार। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि असंतोष अगर होता है लोगों में तो ये प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और इन लोगों को समझना चाहिए और सरकारें शायद कोशिश करती भी हैं कि वो असंतोष को जानने समझने की कोशिश करें। अगली बार से मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में अगर लिखेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी और हम ज़्यादा कुछ कह भी पाएंगे।
एक चिट्ठी है एक राज साहब की शेरकोट बिजनौर से।
जी
इनका ये कहना है कि ये कई दशकों से बीबीसी हिंदी सेवा को सुन रहे हैं, लगभग 80 के दशक से जब ये उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के विद्यार्थी थे और तब से आज तक इन्होंने लिखा कि एक या दो पत्र ही लिखे होंगे लेकिन कभी सम्मिलित नहीं किए गए। और
अब इसका मतलब ये नाराज जरूर होंगे, राज साहब नाराज होंगे हमसे, मैं पहले ही क्षमा मांगता हूँ। आगे क्या लिखते हैं?
लिखते हैं कि हतोत्साहित होकर मैंने रुष्ट होकर पत्र लिखना बंद कर दिया लेकिन जीभ और दांत वाली उक्ति के अनुसार बीबीसी सुनना नहीं छोड़ा।
जीभ और दांत यानी जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, वैसे
बीबीसी के बगैर रह नहीं सकते हैं।
बहुत अच्छा लिखा है राज साहब,
इन्होंने जो जुमला चुना है वो बहुत ही दिलचस्प है,
अभी भी सुनते हैं हैं ये क्या कहते हैं बताइए।
ये एक बात बता रहे हैं कि जो आज की जो उच्च तकनीक है उस समय में भी रेडियो जैसा माध्यम है उससे बीबीसी ने ही इनको जोड़े रखा है, इसके लिए ये धन्यवाद कह रहे हैं।
कोष्ठ में बीच में कुछ और भी लिखते हैं, रेडियो जैसा पुराना माध्यम
जी, पुरातन, पुराना भी नहीं
पुरातन। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह रेडियो सुनते रहें, चाहे आप इंटरनेट पर सुने, चाहे अपने मोबाइल पर सुने, हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते रहें।
जी अगर कार्यक्रमों की ही बात करें तो कई लोगों ने विशेष कुछ कार्यक्रमों पर अपनी राय और टिप्पणी दी है। ये हैं हरेंद्र प्रसाद साहा कटिहार से, ये लिखते हैं कि 22 नवंबर को मोहनलाल शर्मा ने छत्रपति शिवाजी के बारे में कार्यक्रम दिया, जीवन गाथा खोज कर लाए और उन्हें इस खोजी प्रवृत्ति के लिए उन्होंने
दरअसल फैला उजियारा जो सीरीज जो श्रृंखला चल रही है उस पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं की चिट्ठियां आती हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया
जी। और अगला पत्र है लक्ष्मीपुर रक्सौल से फारूक अब्दुल्ला फिजा साहब का, इन्होंने गंभीर एक विषय उठाया है जलवायु परिवर्तन। और पहले तो ये लिखते हैं कि 2 दिसंबर को जो प्रसारित कार्यक्रम था उसमें जलवायु परिवर्तन पर हरिता कांडपाल के सवाल और सलमान रवि के जवाब इनको काफ़ी सटीक लगे और ये कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण विश्व आज जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है जलवायु परिवर्तन।
तो फिजा साहब आपने ये कार्यक्रम सुना और हरिता कांडपाल के साथ सलमान रवि की बातचीत आपको पसंद आई, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चिट्ठियाँ हमारे पास अभी बहुत हैं पर समय बचा है। इसलिए अब मैं इजाजत लेता हूँ और वंदना आपकी इजाजत भी चाहिए मुझे। चलते चलते पता बता दें,
बिल्कुल,
तो हमारा पता है दोस्तों बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003।
नमस्कार।
तो आपकी चिट्ठियां लेकर आए थे राजेश जोशी और वंदना और अब समय है खेल समाचारों का, सुन लेते हैं खेल समाचार राखी शर्मा से।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। 2015 में कुछ बड़ी सीरीज जीत के बाद भारतीय टीम की नजरें अगले महीने से शुरू हो रहे ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर टिक गई हैं। इस दौरे पर खेले जाने वाले 5 वनडे और 3 T20 मैचों के लिए भारतीय टीम का चयन 19 दिसंबर को दिल्ली में होगा। टीम के सीमित ओवरों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भी इसी पद पर बने रहने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा टीम में ज्यादा बदलाव शायद ही देखने को मिले, हालांकि मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हो सकती है। शमी वर्ल्ड कप 2015 के बाद से ही भारतीय टीम से बाहर हैं। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा को भी टीम में जगह मिल सकती है। जडेजा को पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में जगह नहीं दी गई थी। घरेलू टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे युवराज सिंह के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। युवी ने पंजाब टीम की तरफ से खेलते हुए हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में 93 और 78 रनों की पारियां खेलकर अपना दावा ठोका है। ऑस्ट्रेलियाई दौरा 12 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगा। पहले वनडे को छोड़कर इस दौरे पर सभी मुकाबले डे एंड नाइट होंगे। पहला मैच 12 जनवरी को पर्थ में, दूसरा मैच 15 तारीख को ब्रिस्बेन में, तीसरा मैच 17 जनवरी को मेलबर्न, चौथा वनडे 20 जनवरी को कैनबरा और आखिरी वनडे 23 जनवरी को सिडनी में होगा। 3 T20 मैच 26, 29 और 31 जनवरी को एडिलेड, मेलबर्न और सिडनी में होंगे। इस दौरे के लिए भारतीय टीम 6 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। और अब बात टेनिस की। विश्व के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी ब्रिटेन के एंडी मरे अगले साल होने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपन से हट सकते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन अगले साल 18 से 31 जनवरी तक खेला जाना है। इस दौरान मरे की पत्नी किम अपने पहले बच्चे को जन्म दे सकती हैं। मरे ने पिछले महीने ही बेल्जियम को हराकर अपने देश को डेविस कप विजेता बनाया है। इस साल एक भी ग्रैंड स्लैम नहीं जीतने वाले मरे का ध्यान हालांकि अगले साल रियो में होने वाले ओलंपिक्स पर है। मरे ओलंपिक्स में मेन सिंगल्स के गत विजेता हैं।
ओलंपिक बड़ी बात है, बहुत कम होता है जब आपको अपने करियर में 3 या 4 ओलंपिक खेलने को मिले। रियो मेरा तीसरा ओलंपिक है, मेरे ख्याल से ये शानदार होगा। हालांकि ये विंबलडन के ठीक बाद अहम मौके पर आ रहा है, इसलिए तैयारियां अहम होंगी। ओलंपिक अगले साल सभी खिलाड़ियों का लक्ष्य होगा।
खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचार सुना रही थी राखी शर्मा और अब सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम आदमी पार्टी के लगाए आरोपों का खंडन किया है। आज सुबह आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली पर जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA के अध्यक्ष पद पर रहने के लिए दौरान कई वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने चरमपंथी गुट अलकायदा की भारतीय शाखा के 3 महत्वपूर्ण लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जापान के एक पत्रकार ने दक्षिण कोरिया के अभियोक्ताओं की आलोचना की है। तात्सुया काटो को हाल ही में मानहानि के आरोपों से बरी किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में अमरीका और रूस के रिश्तों में सुधार आएगा, चाहे अगला रूसी राष्ट्रपति कोई भी हो। तुर्की के अधिकारियों का कहना है कि देश के दक्षिण पूर्व में सुरक्षा बलों के एक ऑपरेशन में पिछले दो दिनों के दौरान प्रतिबंधित कुर्द संगठन PKK के 23 सदस्य मारे गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्था MSF के मुताबिक कीनिया स्थित दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर दादाब परिसर में हैजा फैल गया है। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी प्रगति सक्सेना। इसी के साथ दिन भर में बस इतना ही। आपसे 9:30 बजे घटना चक्र में फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत।